नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर गहन चर्चा करने वाले हैं, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग दो।
जी, ये पुस्तक पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने लिखी थी, लगभग 1988 से 1990 के बीच।
हाँ, और ये उनकी जो क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला है उसका हिस्सा है। पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था।
बिल्कुल, उन्होंने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माताजी से कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा
और इसे जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने अपने बच्चों से, मतलब अनुयायियों से, ये आग्रह किया था कि इस ज्ञान शरीर को, इस क्रांति धर्मी साहित्य को लोगों तक पहुंचाएं।
जी हाँ,
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूज्य गुरुदेव ने उस समय क्या विश्लेषण किया था और 21वीं सदी के लिए उनका जो नजरिया था, जो काफी आशावादी था, उसे समझें।
हाँ, दृढ़ विश्वास कह सकते हैं उसे।
चलिए तो शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव पुस्तक में पहले तो उस दौर की जो समस्याएं थीं उनका जिक्र करते हैं, जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा था, नैतिक पतन,
जनसंख्या का दबाव, आपसी अविश्वास, ये सब बातें।
हाँ, और वो कहते हैं कि ये सब संकट किसी बाहरी वजह से नहीं बल्कि मनुष्य की अपनी मानवीय दुर्बुद्धि से उपजे हैं, मतलब हमारी अपनी अदूरदर्शिता।
बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि भौतिक प्रगति तो हो रही थी लेकिन सोच जो है वो कहीं ना कहीं संकुचित हो रही थी।
और ये सिर्फ पूज्य गुरुदेव ही नहीं कह रहे थे, शायद दुनिया भर में ये चिंता थी।
हाँ हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा 1988 में ही तो टाइम पत्रिका ने पृथ्वी को एंडेंजर्ड अर्थ या संकटग्रस्त ग्रह घोषित किया था।
ओ हाँ, सही कहा। लेकिन पूज्य गुरुदेव का नजरिया यहीं पर थोड़ा अलग हो जाता है। वो इन चुनौतियों को बताते तो हैं, मगर इसके फौरन बाद एक उम्मीद की तरफ मुड़ जाते हैं।
हाँ, वो निराशा को तो बिल्कुल नकार देते हैं।
और यहीं पर वो महाक्रांति और युग संधि जैसे विचारों को सामने लाते हैं।
जी, उनका मानना था कि ये जो समय है 20वीं सदी का आखिर और 21वीं की शुरुआत, खासकर 1989 से 2000 वाला दशक,
हाँ,
ये सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसा नहीं है, ये एक बड़े परिवर्तन का एक निर्णायक मोड़ का समय है।
लेकिन इतनी समस्याओं के बीच ये उम्मीद, ये परिवर्तन, ये कैसे संभव था उनके अनुसार?
यहीं पर उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण सामने आता है। उनका मानना था कि ये परिवर्तन जरूरी है, ये समय की पुकार है, एक तरह का टर्निंग पॉइंट।
अच्छा,
और वो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ उनकी अपनी सोच नहीं है, वो नोस्ट्रोडेमस से लेकर महर्षि अरविंद जैसे और भी दृष्टाओं का हवाला देते हैं जिनकी भविष्यवाणियां भी कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही थी।
मतलब एक तरह का सामूहिक एहसास कि अब कुछ बदलेगा।
हाँ, एक गहरा विश्वास कि संकट जब चरम पर पहुंचता है तो फिर मनुष्य में विवेक जागता है, सद्बुद्धि की विजय होती है। अंधेरा कितना भी घना हो, सुबह तो होगी ही।
तो फिर ये जो बड़ा परिवर्तन है, इसे लाएगा कौन? कौन सी शक्ति होगी इसके पीछे?
बहुत अच्छा सवाल है। इसके जवाब में पूज्य गुरुदेव एक चौथी शक्ति के उदय की बात करते हैं। वो उसे प्रखर प्रतिभा कहते हैं।
प्रखर प्रतिभा?
ये क्या है?
ये बहुत दिलचस्प है।
देखिए, वो कहते हैं कि दुनिया अब तक मुख्य रूप से तीन शक्तियों से चलती आई है, बुद्धिबल यानी ज्ञान तर्क, फिर बाहुबल यानी सत्ता शासन, और धन बल यानी पैसा संपत्ति।
हाँ, ये तो है।
लेकिन वो कहते हैं कि आने वाला युग इस प्रखर प्रतिभा का होगा। ये इन तीनों से अलग है, इनसे ऊपर है। ये असल में चरित्र बल है, नैतिक साहस है, आदर्शों के लिए निष्ठा है।
मतलब निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचने और करने की क्षमता।
बिल्कुल, जिसका लक्ष्य केवल लोक मंगल हो, सबका भला।
और इस प्रखर प्रतिभा को जगाने के लिए, या कहें कि नए युग का आधार बनाने के लिए, उन्होंने कोई रास्ता भी बताया?
हाँ, उन्होंने नए युग के धर्म के, या कह लें जीवन शैली के, चार चरण या सूत्र बताए। पहला, समझदारी।
समझदारी मतलब दूरदर्शिता, आज का फायदा न देखकर कल का सोचना।
जी।
दूसरा, ईमानदारी।
और ये सिर्फ पैसों की ईमानदारी नहीं बल्कि विचारों में, व्यवहार में, हर चीज में सच्चाई।
ठीक है।
तीसरा?
तीसरा है जिम्मेदारी, अपने हिस्से का काम करना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना।
और चौथा?
चौथा बहादुरी, मतलब जो सही है उसके लिए खड़े होने का साहस, अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत।
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये तो आज भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी रखते हैं।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव इन्हें सिर्फ किताबी बातें नहीं मानते थे, वो इन्हें प्रखर प्रतिभा को विकसित करने का प्रैक्टिकल तरीका बताते थे।
अच्छा,
तो ये तो हुआ व्यक्ति के स्तर पर प्रयास। क्या इसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति भी काम कर रही है उनके अनुसार?
हाँ, वो मानते थे कि सिर्फ इंसानी कोशिशें काफी नहीं है, एक उच्चतर प्रेरणा, एक दैवी योजना भी काम कर रही है। वो इसे महाकाल का संकल्प कहते हैं।
महाकाल का संकल्प यानी समय की शक्ति?
हाँ, एक तरह से ईश्वरीय इच्छा या प्रकृति का नियम जो संतुलन लाने के लिए परिवर्तन लाता ही है, और साथ ही वो सविता यानी सूर्य की जो चेतना शक्ति है उसकी प्रेरणा को भी बहुत महत्व देते थे।
सूर्य, गायत्री मंत्र वाले सूर्य देवता?
जी, ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत। उनका मानना था कि गायत्री मंत्र का जाप और सूर्य का ध्यान व्यक्ति को उस उच्चतर चेतना से जोड़ता है, इससे व्यक्ति की अपनी प्रखर प्रतिभा जागृत होती है।
तो मतलब एक तरफ तो हमें खुद ये चार गुण अपनाने हैं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी।
जी।
और दूसरी तरफ ये विश्वास रखना है कि एक बड़ी योजना भी काम कर रही है, इन दोनों के मेल से ही उज्जवल भविष्य बनेगा।
हाँ, पूज्य गुरुदेव का यही मानना था कि व्यक्तिगत चेतना का विकास और सामूहिक सद्भावना, जैसे सहयोग बढ़ना, शिक्षा का फैलना, मेहनत का सम्मान होना, यही असली तरक्की लाएंगे।
ये सोच तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगती है।
निश्चित रूप से, अगर हम संक्षेप में देखें तो पूज्य गुरुदेव ने 35 साल पहले ही आने वाले समय की चुनौतियों को साफ साफ देखा था, पर वो वहीं रुके नहीं।
हाँ, उन्होंने समाधान भी दिया।
उन्होंने मानवीय विवेक, नैतिक बल और आध्यात्मिक चेतना पर अटूट विश्वास दिखाते हुए एक उज्ज्वल 21वीं सदी का खाका खींचा। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक तरह का आह्वान भी था।
सही कहा, हर व्यक्ति के लिए एक पुकार कि वो इस सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बने, अपनी प्रखर प्रतिभा को जगाए।
जी, और लोक मंगल में अपना योगदान दें।
तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने करीब 35 साल पहले भविष्य की जो तस्वीर खींची थी और जिन मूल्यों पर जोर दिया था, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में वो कितने सार्थक लगते हैं?
और शायद सबसे अहम सवाल ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर हम सब अपनी उस प्रखर प्रतिभा को, उस नैतिक बल को जगाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।